नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि क्षेत्र में नीति निर्माण और निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि सदन की कार्यवाही निष्पक्षता, अनुशासन और नियमों के अनुसार संचालित हो। सरकार जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए कथित हमले की व्यापक जांच कराएगी। ईरान द्वारा फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। बाजल में स्विस ओपन बैडमिंटन में किरण जॉर्ज आज रात पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के जेसन गुनावन से खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कृषि, विशेषकर कृषि खाद्य प्रणालियों में कार्यरत महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली 2026 में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत ने महिला नेतृत्व वाली विकास रणनीति अपनाई है।
फसल को बोने, काटने, प्रसंस्करण करने और हाट बाजार में ले जाने जैसे सभी गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, वन्य उपजों के समुचित उपयोग तथा कृषि पर आधारित उद्यमों को चलाने जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां अथक परिश्रम करती हैं। वे कृषि अर्थव्यवस्था को अमूल्य योगदान देते हैं।
इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और वे इसमें योगदान देती हैं। उन्होंने बताया कि ICAR के रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जल्दी एक लैंगिक मंच का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंच पूरे देश में कृषि अनुसंधान नेटवर्क में महिला केंद्रित अनुसंधान कार्यों को गति और दिशा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रूपये अंतरित करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार के पहले चरण का शुभारंभ किया है। ये किसानों को कृषि संबंधी प्रश्नों की व्यापक जानकारी प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत किसानों को उनकी अपनी भाषाओं में फोन कॉल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
किसान कल्याण के लिए हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी के साथ एक ही AI डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाए भारत विस्तार, और इसलिए उसके प्रथम चरण को भी लॉन्च किया है, जिसमें किसान को सारी जानकारी एक फोन कॉल पर भी उसकी भाषा में देने का काम किया जाएगा। पिछले वर्षों में हमने MSP पर भी गेहूं, धान, कपास, दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीदी की है और किसान को सस्ते दामों पर खाद मिलना सुनिश्चित किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सदन की कार्यवाही निष्पक्षता, अनुशासन, संतुलन और नियमों के अनुसार संचालित हो। विपक्ष द्वारा उनके निष्कासन की मांग वाले प्रस्ताव पर बयान देते हुए श्री बिरला ने कहा कि उन्होंने सभी के साथ सहयोग और सद्भाव बनाए रखते हुए व्यवस्था और दक्षता कायम रखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है।
मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। हमारे संविधान द्वारा स्थापित संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में मेरा हमेशा अटूट विश्वास रहा है। पिछले 2 दिनों में इस सदन ने लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रणाली को पूरा किया। इस चर्चा के दौरान अनेक विचार, अनेक दृष्टिकोण, अनेक भावनाएं इस सदन के सामने रखी गई। मैंने सदन के प्रत्येक मान्य सदस्य की बात को गंभीरता और ध्यान से सुना।
श्री बिरला ने कहा कि चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को बोलने से रोका जा रहा है और उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे सदन का नेता हो, विपक्ष का नेता हो या कोई अन्य सदस्य, सभी को सदन में केवल नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार बोलने का अधिकार है।
सदन में जब भी लोकमत के किसी विषय को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मंत्रीगण हो, उनको भी अगर वक्तव्य देना होता है तो नियम 372 के तहत अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसके नोटिस के बाद ही वो अपने वक्तव्य दे सकते हैं। किसी माननीय सदस्यों को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार इस सदन में नहीं है।
लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल ने लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष पर्याप्त समर्थन जुटाने में विफल रहा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री जायसवाल ने कहा कि यदि मतदान होने दिया जाता तो अध्यक्ष के पक्ष में भारी समर्थन मिलता। उन्होंने कहा कि करीब 350 से अधिक वोट उनके पक्ष में पड़ते।
कांग्रेस की यह आदत है कि पहले खुद ही नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, उन्हें वोटिंग होने देना चाहिए था, लेकिन वोटिंग होने देने से जो माननीय लोकसभा स्पीकर के प्रति सभी सांसदों का विश्वास है और उसके कारण उन्हें लगभग कल 350 से ज्यादा वोट मिलते और पूरी की पूरी कांग्रेस एक्सपोज हो जाती, इस डर से वो भाग गए हैं। ध्वनि मत तो एक फॉर्मेलिटी है।
एलपीजी और ईंधन की कमी की अफवाहों पर श्री जायसवाल ने कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। लोकसभा की कार्यवाही, एलपीजी संकट पर चर्चा की मांग सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बयान दिया, जिसमें उन्हें पद से हटाने की मांग की गई थी। इसे सदन ने कल ध्वनिमत से खारिज कर दिया था। बाद में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष के नेता ने एलपीजी संकट पर स्थगन नोटिस दिया है और इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की है। श्री बिरला ने कहा कि उन्हें नोटिस मिल गया है और उन्होंने सरकार को इसकी जानकारी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और सरकार इस पर जवाब देना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार तत्काल जवाब देना चाहती है। हंगामा के जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही इस समय जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने सुरक्षा परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक एआई और मशीन लर्निंग उपकरणों का उपयोग करते हुए स्मार्ट मॉनिटरिंग को अपनाया है। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुए कथित हमले की व्यापक जांच कराई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। श्री अब्दुल्ला की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।
भारत सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और मैं भारत सरकार की ओर से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी इसमें इंक्वायरी की आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी और जो दोषी है, जिसे पकड़ लिया गया है, उसके मंसूबों को भी बहुत गहराई से उसकी जानकारी ली जाएगी और वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला जी के जीवन की रक्षा के दृष्टि से जो आवश्यक विषय होगा वो जरूर किया जाएगा।
कल रात श्री फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वे बाल बाल बच गए थे। शादी समारोह से बाहर निकलते समय पीछे से एक हमलावर ने उन पर गोली चलाई। आरोपी की पहचान 63 वर्षीय कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है, जो जम्मू के पुरानी मंडी का निवासी है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और हमला नाकाम कर दिया। आरोपी के पास से पिस्तौल बरामद की गई है। आगे की जांच जारी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुल 86,093 मरीजों का इलाज किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी के एक प्रश्न के उत्तर में संसद में बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सर्वाधिक और लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम मरीजों का इलाज किया गया। श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने लोकभवन में उन्हें शपथ दिलाई। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव कल नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एक विदेशी फिनटेक प्लेटफॉर्म से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब के 15 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। सीबीआई ने बताया कि फर्जी ऑनलाइन योजनाओं के माध्यम से हजारों भारतीय नागरिकों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई। विदेश मंत्रालय सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा है कि आतंकवाद मानवाधिकारों के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। श्री जॉर्ज जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र में वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व को आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के अपने संकल्प में दृढ़ रहना चाहिए और इस मुद्दे पर एक स्वर में बोलना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दिल्ली स्थित भारत इजराइल संयुक्त रक्षा सुविधा केंद्र में भीषण आग लगने और दोनों देशों के कई कर्मचारियों की मौत की बात कही गई है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए लोगों से सोशल मीडिया पर झूठे और निराधार दावों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया है और संयुक्त अरब अमीरात ने विमानन ढांचे पर हमले की कोशिश की है। अबूधाबी प्रशासन के अनुसार पुराने अबूधाबी हवाई अड्डे के पास आग लग गई थी जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया। अमेरिका इसराइल के ईरान के खिलाफ शुरू किए गए एक बड़े संयुक्त सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 13वें दिन खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। आज सुबह दुबई क्रिक हार्बर के पास एक इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा कथित तौर पर रात भर में ईरान के अतिरिक्त मिसाइलों को रोके जाने के बाद क्षेत्रीय सरकारें हाई अलर्ट पर हैं। दो विदेशी तेल टैंकरों पर घातक हमलों के बाद इराक ने अपने एक प्रमुख तेल बंदरगाह पर परिचालन निलंबित कर दिया है, जिससे पश्चिम एशिया में ऊर्जा अवसंरचना और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच ईरान के सशस्त्र बलों ने समुद्री सुरक्षा को लेकर एक नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि ईरानी बंदरगाहों पर हमला होता है तो पूरे क्षेत्र के बंदरगाहों को वैध लक्ष्य माना जाएगा। ईरान के इस संदेश से वाणिज्यिक जहाजरानी मार्गों और बंदरगाह सुविधाओं में संघर्ष के संभावित विस्तार का संकेत मिलता है, जिससे पश्चिम एशिया में व्यापार प्रवाह में काफी बाधा आ सकती है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं, जिनमें ईरान के वैध अधिकारों की मान्यता, हर जाने का भुगतान और भविष्य में हमलों के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी शामिल हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब राजनयिक प्रयास सीमित हैं और कई मोर्चों पर सैन्य झड़पें जारी हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
बाजल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में आज भारत के किरण जॉर्ज का मुकाबला हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा। किरण ने कल सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लो किन यू को हराया। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म और आकाशवाणी की आगामी कड़ी में हम श्री ब्रजलाल भट्ट से बातचीत करेंगे। श्री ब्रजलाल भट्ट को जम्मू कश्मीर में सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये पॉडकास्ट आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के गोल्ड चैनल से प्रसारित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि क्षेत्र में नित्य निर्माण और निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि सदन की कार्यवाही निष्पक्षता, अनुशासन और नियमों के अनुसार संचालित हो। सरकार जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला पर हुए कथित हमले की व्यापक जांच कराएगी। ईरान द्वारा फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। बाजल में स्विस ओपन बैडमिंटन में किरण जॉर्ज आज रात पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के जेसन गुनावन से खेलेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।